لا تتفاخر. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، پچھلے چند دنوں سے اللہ والوں کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور مشائخ نے ہر دور میں اللہ والوں کی صفات بیان بھی کی، ہر دور میں مشائخ نے لکھا بھی ہے. تو کچھ مشائخ نے اللہ والوں کی 10 نشانیاں لکھی، کچھ نے زیادہ لکھی اور کچھ نے کم. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صاحب نسبت بندے کی دو بڑی نشانیاں، ایک وہ فرماتے ہیں کہ ان پر ذکر کا غلبہ ہوگا، یا زندگی کے اکثر اوقات اللہ کی یاد میں گزرے، اور دوسرا کہ وہ گناہوں سے پرہیز کرنے والے. پچھلی چند مجالس میں ہم نے کئی ساری اللہ والوں کی صفات بیان کی، اور اللہ والوں کی ایک بڑی صفت جو حدیث پاک میں آئی وہ یہ کہ وہ راتوں کو عبادت کرنے والے لوگ ہیں. اسی طرح اللہ والوں کی ایک بڑی صفت یہ کہ وہ سچ بولنے والے، اسی طرح اللہ والوں کی ایک بڑی صفت یہ کہ وہ اس چیز کا استحضار رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی فاعل حقیقی ہے، ہر فعل کا کرنے والا اللہ ہے. تو اس چیز کو ہم سب مانتے تو ہیں، مگر اس چیز کا استحضار ہونا یہ اللہ والوں کا خاصہ ہے. اسی طرح کل کی مجلس میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ اللہ والے تارک دنیا ہوتے ہیں، دنیا کو ترک کرنے والے. اور ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ عام طور پہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تارک دنیا، تو لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا چھوڑ کے اور جنگل اور غاروں میں بیٹھا ہوگا، اس کے پاس نہ گھر ہوگا، نہ کھانے کو کچھ ہوگا، نہ کام کاج کرتا ہوگا، نہ نوکری کرتا ہوگا. تو اگر تو یہ ایسا ہی ہے تو پھر تو تارک دنیا ہے. اور اگر کوئی شخص ہے جو نوکری کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے یا اس کے پاس کوئی گھر ہے یا اس کے پاس مال و دولت ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیا دار ہے، یہ تارک دنیا نہیں. مگر مشائخ کی تحقیق یہ ہے کہ تارک دنیا اس شخص کو نہیں کہتے جو جنگلوں اور غاروں میں بیٹھا ہوا ہے یا جس کے پاس مال نہیں ہے، کہ نزدیک تارک دنیا کی تعریف یہ نہیں کہ جس کے پاس گھر نہیں ہے یا جس نے شادی نہیں کی ہے یا جس کے پاس کاروبار نہیں ہے یا جو نوکری نہیں کرتا، بلکہ مشائخ کے نزدیک تارک دنیا وہ ہے جس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی. تو عین ممکن ہے کہ ملینئر اور بلینئر ہو مگر آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے اور سارا وقت ذہن پہ آخرت کا خوف ہے. تو اس امیری میں، اس مالداری میں بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ تارک دنیا ہے. تو بہترین گھر اور بہترین گاڑی اور بہترین کاروبار اور نوکری کا حامل ہوگا، مگر پھر بھی مشائخ کی تحقیق کے مطابق، کیونکہ آخرت کی فکر کا غلبہ ہے، تو یہ تارک دنیا ہی کہلائے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص بالکل کھانے پینے کو بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ اور چیز ہے، نہ مال ہے، فقیر ہے، مگر آخرت کی بھی فکر نہیں ہے، تو اس غربت کے باوجود بھی دنیا دار ہی کہلائے گا. تو تارک دنیا وہ نہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو، تارک دنیا اس کو نہیں کہتے جس کے پاس مال نہ ہو، تارک دنیا اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آخرت کی فکر خوب لگی. मगर ये आखिरत की फिक्र जिसको लगी भी होती है इस तारिके दुनिया को, ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, या वो उसके दिल के अंदर की एक चीज सिर्फ नहीं होती, ये उसके आमाल से बाहर नजर भी आती है। तो ये चीज नजर आएगी वो अपनी औलाद की परवरिश में दीन को आगे रखेगा, वो अपने कारोबार को दीन के मुताबिक चलाएगा, वो अपने घर के माहौल को दीन के मुताबिक बनाएगा, तो उसकी हर चीज में आखिरत नजर आएगी। तो ये जुबानी कलामी चीज भी नहीं है कि कोई शख्स कहे कि जी मेरे पास इतनी सारी दुनिया है मगर मैं तारीख दुनिया हूं क्योंकि मुझे आखिरत की फिक्र है। ये जब आखिरत की फिक्र अंदर है तो ये आखिरत की फिक्र फिर बाहर भी नजर आती है। मुसलमानों के एक नेक बादशाह गुजरे हैं और उनका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब बादशाह नहीं बने थे तो उनके पास इतने कपड़े होते थे, गवर्नर थे अभी, कपड़े इतने होते थे कि उसकी मिसाल मिलती नहीं थी। यानी बादशाही अंदाज में अगर कपड़े किसी एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट करने होते तो 60 ऊंटों पे कपड़े डाले जाते थे। यानी इतने कपड़े थे, एक जगह से दूसरी जगह जब हजरत सफर करते तो 60 ऊंट तो सिर्फ कपड़ों को डालने के लिए जरूरत पड़ती। ये तो शाहाना अंदाज था। तो गवर्नर थे तो ये हाल था, और जब बादशाह बने तो सिर्फ एक जोड़ी कपड़े की थी, और वही एक जोड़ी जुमा के दिन सुबह धोते खुद, उसको सुखाते, तहबंद बांध लेते और जुमा के वक्त उस एक जोड़ी को पहन के जुमा की नमाज पढ़ाने आ जाते। तो किसी ने उनसे पूछा कि हजरत जब आप गवर्नर थे तो 60 ऊंटों पे तो आपका सिर्फ कपड़े आते थे, और अब तो बादशाह बन गए हैं, यानी आपसे ऊंचा तो कोई और ओहदे में है नहीं, तो अब आपके पास सिर्फ एक जोड़ी है। फरमाया जब गवर्नर था तो मेरी जिंदगी का मकसद जो था वो बादशाह बनना था, और उस गवर्नरी के दौर में मुझसे पहले जो बादशाह जो थे उनको मैंने देखा, उनमें से एक मेरा चचा था और चार चचा के बेटे, पांच बादशाहों को देखा, और पांच बादशाहों को यही देखा कि बादशाह बनने के बाद वो फौत हुए, और क्योंकि मेरे रिश्तेदार थे उनको कब्र में भी मैंने ही उतारा। तो मुझे पता चल गया कि इस दुनिया की यही हकीकत है कि तुम बादशाह भी बनोगे तो कब्र में ही जाना है। तो जब गवर्नर था तो मेरी जिंदगी का मकसद बादशाह बनना था, जब बादशाह बना तो मेरी जिंदगी का मकसद कब्र में कामयाब बनना था। तो इसलिए अब ये 60 ऊंटों पे कपड़ों की जरूरत नहीं है, एक ही जोड़ी में काफी। तो तारिके दुनिया को आखिरत की फिक्र होगी ज्यादा। तारिक दुनिया वो नहीं है कि जो गरीब हो, तारिक दुनिया की तारिक दुनिया गरीब भी हो सकता है अमीर भी हो सकता है, तारिक दुनिया की असल तारीफ ये है कि उसको आखिरत की फिक्र होगी, और ये आखिरत की फिक्र आमाल में नजर आएगी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त था और उनके करीबी रिश्तेदार आए, ये बिस्तरे मर्ग पे ऐसे लेटे हुए थे। तो बीमार आदमी, जिंदगी का आखिरी वक्त गुजर रहा है, करीबी रिश्तेदार आया तो वो यही समझे कि तीमारदारी के लिए आया है, और आकर बैठ गया, और तीमारदारी उसने नहीं की बल्कि एतराज किया जी ये आपने क्या किया, आप तो दुनिया से जा रहे हैं। आपसे पहले जितने बादशाह थे अपनी औलादों के लिए कितना कितना कुछ छोड़ के जाते थे, और आपने अपनी औलादों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, 11 बेटे हैं पीछे, तो इस बिस्तरे मर्ग पर बीमारी की हालत में ये जो रिश्तेदार आया था वो नाराजगी करने आया था कि ये क्या आपने किया। तो मौत से चंद दिन पहले ये मामला हुआ, रिश्तेदार ने नाराज किया कि बेटों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो हालांकि बीमारी में थे मगर बैठ गए, उठ के बैठ गए और तारीखी जुमले फरमाए, फरमाए कि अगर मेरे ये बेटे बुरे हैं, अल्लाह के नाफरमान अगर बनते हैं, तो माल और दौलत देकर इनकी नाफरमानी में इनका मददगार नहीं बनना चाहता। ये वक्त का बादशाह है। और अगर ये मेरे बेटे नेक हैं तो अल्लाह ने इनकी सरपरस्ती का वादा कुरान में किया है, वहुआ यतवल्ल सालिहीन, अल्लाह नेकोकारों का सरपरस्त है, तो फिर मुझे आगे की वैसे भी फिक्र नहीं है कि अल्लाह ने सरपरस्ती कर ली। और ये कह के और इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो तारे के दुनिया, माल ज्यादा या माल कम होने का नाम नहीं है, तारे के दुनिया वो है कि जिसके दिमाग में आखिरत घूम रही है, उसकी फिक्रों में आखिरत है, और जब दिमाग में आखिरत घूमेगी तो आमाल भी आखिरत वाले निकलेंगे। तो ये भी ना हो कि इंसान सबको यही समझाए कि जी मैं आखिरत वाला हूं, कि मेरे दिमाग में आखिरत घूमती है, ये समझाने की जरूरत किसी को भी नहीं पड़ती, उसके आमाल से ही आखिरत जो है वो जाहिर हो जाती है। तो अल्लाह वालों की बड़ी निशानी है कि अल्लाह वाले तारिके दुनिया होते हैं, और जो दुनिया के इस जादू में फंस गया फिर वो हर गलती का मुर्तकिब हो जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये दुनिया एक जादूगरनी है, दुनिया एक जादूगरनी है, और इसका जादू जो है वो हारूत और मारूत के जादू से भी ज्यादा बड़ा जादू है। अच्छे अच्छे को ये गलत फहमी में डालती है और अच्छे अच्छों से ये गलतियां करवाती है ये दुनिया। तो ये दुनिया एक जादूगरनी है और इसका जादू हारूत और मारूत के जादू से भी ज्यादा बड़ा जादू है, कि हारूत और मारूत का जो जादू था वो मियाँ और बीवी में दूरी करवाने वाला जादू, ये दुनिया का जादू वो जो बंदे और अल्लाह में दूरी करवाने वाले। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया के जादू से महफूज फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء لكل داء، وصلى الله تعالى على حبيبنا سيدنا محمد بعد آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.